நமோரிஹந்தாணம் நமோ சேதாணம் நமோ ஆயரியாணம் நமோ வஜ்ராயாணம் நமோ லோயே ஸவசாஹூணம் தீன புவன மே சார் வீதராக விஜ்ஞானதா ஸ்வரூப சிவகார் நமோ த்ரியோக சம்ஹாரிகே.
આપણે પાંચમી ગાઢ નો સ્વાધ્યાય કરી આપ આગ્યા છે. આપણે પાંચમી ગાઢ નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે, રાઈટ? એમાં બાર ભાવના નો આપણો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. પાંચમી ડાળ બાર ભાવના. બાર ભાવના નામ બધાને આવડે છે? શરૂઆતની સાથે બોલતું પહેલી કઈ છે? પહેલી કઈ ભાવના? અનિત્ય ભાવના. બીજી અચરણ ભાવના. ત્રીજી સંસાર ભાવના. ચોથી એકત્વ ભાવના. પાંચમી અન્યત્વ ભાવના. છઠ્ઠી અશુચિ ભાવના. સાતમી આશ્રવ ભાવના. આઠમી સંવર ભાવના. નવમી નિષ્ઠા ભાવના. દસમી લોક ભાવના. અગિયારમી બોધિ દુર્લભ ભાવના. અને બારમી ધર્મ ભાવના. એમાં આપણી દસ ભાવનાઓ લોક ભાવના સુધી થઈ ગયું છે. આજે આપણે બોધિ દુર્લભ ભાવના અને ધર્મ ભાવના સમજવાના છે. થોડુંક રિવિઝન જોઈએ અને પછી આગળ વધીએ. આ બાર ભાવનાઓનું કોણ ચિંતન કરે છે? મુનિરાજ મુખ્યત્વે ચિંતન કરે છે, પણ આપણે પણ આનું ચિંતન નિરંતર કરવું જોઈએ. તેમાં અનિત્ય ભાવના શું કહે છે? કે આ સંસારમાં આપણા જેટલા પણ સંયોગો છે, આપણી આજુબાજુ જેટલા પણ સાધનો છે, એ બધા આપણી સાથે ટેમ્પરરી રહેવાવાળા છે. કોઈ આપણી સાથે પરમનન્ટ રહેતું નથી. કોઈ આપણી સાથે પરમનન્ટ રહેવાવાળું નથી. જ્યારે આપણો આત્મા હંમેશા આપણી સાથે પરમનન્ટ રહેશે. અશરણ ભાવના શું કે છે? કે જીવને જ્યારે આ મનુષ્ય પર્યાય છૂટવાનો કાળ આવશે, મરણનો કાળ આવશે, ત્યારે એને કોઈ શરણ આપનાર નથી. પોતાના આત્માનો વિચાર કરશે તો ત્યાં એને શાંતિ મળશે ને એ શરણ આપનાર. બીજું છે સંસાર ભાવના. જીવ આ પર પદાર્થ ઉપર લક્ષ્ય, એટલે કે એનું ધ્યાન કરીને, એના ઉપર ફોકસ કરીને, આપણો ઉપયોગ હંમેશા પર પદાર્થ ઉપર વેસ્ટ કરીને ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. આત્મા તરફ જોતા, એને એની તરફ એનો વિચાર કરતા, એનો અનુભવ કરતા, એ ચાર ગતિ સંસારનો નાશ થાય છે અને જીવ મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. આવો વિચાર એ સંસાર ભાવના. પછી છે એકત્વ અને અન્યત્વ. એકત્વ અન્યત્વ ભાવના શું કહે છે? કે જીવ હંમેશા વિશ્વના દરેક પદાર્થ હંમેશા એકલા જ પોતપોતાની પર્યાયોમાં પરિણમન કરે છે અને પોતપોતે જે પણ પરિણામ કરે છે એના ફળ પણ પોતે જ ભોગવે છે. અન્યત્વ શું કહે છે? કે બાકી બધા પર પદાર્થ અન્ય છે, જીવથી અન્ય છે, બરાબર? પછી અશુચિ ભાવના, કે આ જે શરીર જે છે એ મલિન પદાર્થથી ભરેલું છે. જીવનો એના પર એટલો તીવ્ર મોહ છે કે એને પોતા પ્રત્યે માને છે. બાકી એનો સાચો વિચાર કરે કે આ શરીર તેનાથી બનેલું છે તો એના ઉપર એને અટ્રેક્શન આવે જ નહીં. તો આવો વિચાર કરો એ અશુચિ ભાવના. આ એક થી છ ભાવના તો જીવને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે, આ પર પદાર્થથી ચિંતા કરવા માટે થઈને એનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આગળની સાત થી બાર એનો વિચાર કરતા જીવ મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધે છે. જેમ જેમ આગળ વધતા એને કેવો વિચાર આવે છે એનું વર્ણન આમાં આવે છે. તો 7, 8, 9 આશ્રવ સંવર ને નિર્જર એ ત્રણે પણ એક સાથે કનેક્શનમાં છે. કે જીવ હંમેશા મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ કરે છે, એના આશ્રવના પરિણામ છે. એનાથી દૂર થઈને પોતાના આત્માના અનુભવમાં લાગે છે તો એ સંવરના પરિણામ છે. અને એમાં જ નિરંતર આગળ અનુભવ કરતા શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતા નિર્જરા થાય છે, બરાબર? આ બધું આપણે જોઈ લીધું છે. પછી શું કહે છે? કે આ જે ત્રણ લોક જે છે એ ત્રણ લોકમાં છ દ્રવ્ય રહેલા છે. એમાં અનંતાનંત દ્રવ્ય છે જેમાં હું એક જીવ દ્રવ્ય છું, બરાબર? આ લોક કોઈ બનાવ્યો નથી, એનો કોઈ નાશ કરતું નથી. દરેક પદાર્થ અનાદિકાળથી અનંત કાળ સુધી પોતપોતાના પર્યાયના પ્રવાહમાં ફ્લો થાય છે. તો એવી રીતના હું પણ એવી રીતના પર્યાયના પ્રવાહમાં ફ્લો થાઉં છું, અને હવે મારો પુરુષાર્થ કરીને હું અહીંયાથી મોક્ષમાં જઈને એનો અનુભવ હું કરી શકું. બરાબર, આટલું લોભ ભાવનામાં આવી. હવે એનાથી આગળ આપણે આજે બૌદ્ધિ દુર્લભ ભાવના જોઈએ છે. જો પાનું નંબર છે 152, પેજ નંબર 152, પાંચમી ઢાળની 13મી ગાથા છે. પાંચમી ઢાળ 13મી ગાથા, બરાબર મળી ગઈ બધાને? કોઈને પાછળ બુક્સ જોઈતી હોય તો અહીંયાથી યુ કેન ટેક. જો 13મી ગાથામાં શું કે છે, અંતિમ ગ્રીવક લો કી પદ કી હદ પાયો અનંત વિર્યાપદ પર સમ્યક જ્ઞાન ન લાધો દુર્લભ નિજ મે મુનિ સાધો. જો આપણે થોડું ડાયગ્રામ થી સમજે, ઘણા નવા લોકો છે ખબર ન હોય કે ગ્રહવેગ શું છે. આ ત્રણ લોક છે, ખ્યાલમાં આવે છે? બરાબર, થ્રી ડાયમેન્શનલ માં છે એટલે અહીંયા પણ આમ સમજી લેવાનું, રાઈટ? તો એમાં આ મધ્ય લોક છે, ઓનલી ધીસ લાઈન, થોડું થિનર પાર્ટ ઓફ ધીસ લાઈન, ધીસ ઇઝ મધ્ય લોક. This is adholo અને this is urdholo, right? In general, જીવ જ્યારે પુણ્યના ભાવ કરે છે તો ઉર્ધ્વલોકમાં દેવગતિમાં જન્મ લે છે, અને જ્યારે પાપના ભાવ કરે છે તો કાં તો તિર્યંજ ગતિમાં મધ્યલોકમાં અથવા નરક ગતિમાં અધોલોકમાં જન્મ લે છે. જેવા પરિણામ કરે છે એવા એને બહારના સંયોગ મળે છે અને એના એ ફળ ભોગવે. આટલું ક્લિયર? ઓકે, તો હવે પુણ્યના ભાવ જ્યારે કરે છે તો જેટલા પુણ્યના ભાવ વધારે એટલું એ ઉપર ઉપરના સ્વર્ગમાં જન્મ લે છે. આટલું ક્લિયર? ઓકે, તો અહીંયા દેર આર ફર્સ્ટ 16 સ્વર્ગ. પહેલા 16 સ્વર્ગ છે, પછી 9 ગ્રહવેગ છે, 9 ગ્રહવેગ, પછી 9 અનુદિશ અને 5 અનુત્તર. તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ આમ જેમ જેમ વર્ટિકલ ઉપર જાય છે એમ પુણ્યના પુણ્ય જેટલું વધારે હોય એટલું ઉપર જન્મ લે છે. તો મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ જે હોય એ 9મી ગ્રહવેગ સુધી જન્મ લઈ શકે છે. આટલું ક્લિયર છે? જે મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ હોય એ 9મી ગ્રહવેગ સુધી જન્મ લઈ શકે છે. એની ઉપરની જેટલી પોઝિશન્સ છે એ બધી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ માટે મુક્ત છે. આ ઉપરના સ્વર્ગોમાં પણ અસંખ્યાત દેવો છે, અસંખ્યાત છે, પણ એમાં ઉત્પન્ન થવા માટે યુ હેવ ટુ હેવ સમ્યક દર્શન એન્ડ યુ મસ્ટ બી મુનિરાજ ઇન ધ પ્રીવિયસ લાઈફ, તો જ તમે અહીંયા સુધી જન્મ લઈ શકો. હવે થોડું વધારે ડિટેલમાં જોઈએ. જો જે જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર, એટલે ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનથી ફોર્થ ગુણસ્થાનમાં આવે છે, પણ ફોર્થ ગુણસ્થાનમાં જીવને બહુ વૈરાગ્ય નથી એટલે કોઈ પણ જાતના એમને વ્રત નથી. આટલો બધાને ખબર છે, રાઈટ? તો અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. તો આપણા જેવા જ દેખાય, ખાલી અંદર વિચારનો એંગલ ચેન્જ થઈ ગયો, પણ બહારમાં હજી આપણી જેમ ધંધા પાણીમાં જોડાયેલા છે એને પણ કદાચ કંઈક ટીવી જોવાનો ભાવ થાય સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને, સમજાય છે ને? તો એના પાપ પણ એટલા જ છે ને પુણ્ય પણ એટલા છે, ખ્યાલ આવે છે? તો ખાલી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હોય, અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ, તો અહીંયા સ્વર્ગમાં જ ઉત્પન્ન થાય, એનાથી ઉપર ન જઈ શકે, ખ્યાલ આવે છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ છે પણ એને વ્રત નથી, એટલે એટલા બધા પુણ્યના બંધ નથી. તો અહીંયા નીચેના સ્વર્ગોમાં અથવા અહીંયા ઉપરના સ્વર્ગોમાં ત્યાં સુધી જન્મ લે છે. ક્લિયર? ઓકે. હવે જે પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક છે, જેમણે પાર્શિયલ વ્રત લીધા છે, સમજાય છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, પાર્શિયલ વ્રત લીધા છે, પણ હજી અણુવ્રત છે, હજી મહાવ્રત મુનિરાજની જેમ નથી. અણુવ્રત ને મહાવ્રત ખબર છે? ખબર છે ને? તો અણુવ્રત એટલે પાર્શિયલ વ્રત લીધા છે. તો એમની લિમિટ ઇઝ અપ ટુ 16th સ્વર્ગ, સમજાય છે? પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક, વ્રતી શ્રાવક ગ્રહવેગમાં જન્મ નથી લઈ શકતા, અહીંયા સ્વર્ગ સુધી ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્યાલમાં આવે છે? હવે ઉપરના સ્વર્ગોમાં જન્મ લેવા માટે મુનિરાજના જેવા શુદ્ધ આચરણ હોય, એવા આચરણનું પાલન હોવું જોઈએ. તો એમાં એટલો તીવ્ર પુણ્ય બંધ થાય છે કે ઉપરના સ્વર્ગોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, સમજાય છે? સમ્યક દર્શન હોય કે ન હોય, તમારા આચરણ જો એટલા શુદ્ધ હોય તો સામે એટલા પુણ્ય બંધ થાય છે. પુણ્ય બંધ ને કારણે ઉપરના સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન તો થાય છે, પણ વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ? કે ત્યાં એના ભોગ ભોગે છે. હવે જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ છે, એને તો આત્મા શું છે કઈ ખબર નથી, તો એ ત્યાં ભોગ ભોગે છે. ત્યાંથી એના જેવા પરિણામ થાય છે એવા આગળના ફળ ભોગવે છે. પરંપરાએ આફ્ટર અ વાઇલ એ પાછા નિગોળમાં વયા જાય, કેમ કે એમને હજી આત્મા શું છે, મોક્ષ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય એનો એમને ખ્યાલ નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? એટલે એ તો ખાલી પુણ્યને ભોગવામાં આનંદ માને છે, આજુબાજુ જે સંયોગ મળ્યા એમને એન્જોય કરવામાં માને છે. હવે ઉપરના સ્વર્ગોમાં હોય તો ત્યાંથી ડાયરેક્ટ એક કુગતિમાં નો જાય, એટલે ત્યાંથી તો મનુષ્ય જ થશે, મનુષ્ય થશે, પણ પછી ત્યાં વળી પાછા એ તો ખરાબ પરિણામ કરશે, કેમ કે એમને કઈ એ સમ્યક દર્શન નું એનું મોટિવેશન નથી. એટલે દર ભાવમાં એના શુદ્ધ પરિણામ, શુભ પરિણામ થવા એ કમ્પલસરી નથી. તો કદાચ અહીંથી પાછા સ્વર્ગમાં પણ જાય, પાછા નીચે આવે, પણ પરંપરાએ તિર્યંશ, નરક અને નિગોદમાં વયા જાય છે. જે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે, ભાવલિંગી મુનિરાજ થયા છે, ઉપરના ગુણસ્થાનોમાં ગયા છે, અરે સોરી, ઉપરના સ્વર્ગોમાં ગયા છે, એ તો લગભગ અમુક ભાવોમાં મોક્ષે જ વયા જાય છે. ખ્યાલ આવે છે? એમાં આ જે પાંચ અનુત્તર છે ને, એ પાંચ અનુત્તરમાં તો એવો નિયમ છે કે એ પાંચ અનુત્તર એટલે પાંચ વિમાન છે. વચમાં એક સર્વાર્થ સિદ્ધિ કરીને વિમાન છે, નામ સાંભળ્યું? સર્વાર્થ સિદ્ધિ. અને આજુબાજુ બીજા ચાર વિમાન છે. તો સર્વાર્થ સિદ્ધિમાં જે હોય દેવ, એ તો ત્યાંથી નેક્સ્ટ ભવે જ મનુષ્ય થઈને મોક્ષે જાય છે. ખ્યાલ આવે છે? કોઈ એક તીર્થંકર નું નામ ખબર છે, સર્વાર્થ સિદ્ધિથી આવીને મોક્ષે ગયા હતા? શાંતિનાથ ભગવાન, આદિનાથ ભગવાન, આ બધા સર્વાર્થ સિદ્ધિથી નેક્સ્ટ ભવે આવીને મોક્ષે ગયા છે. ખ્યાલ છે? અને સીતાનો જીવ હજી 16મા સ્વર્ગમાં છે, અત્યારના હજી 16મા સ્વર્ગમાં હજી એમને વાર છે. અને આ બાકીના ચાર વિમાન જે છે એમાં જે જીવ જાય એ ત્યાંથી મનુષ્ય થાય, પાછા દેવ થાય, પાછા મનુષ્ય થઈને મોક્ષે જાય છે. બાય રૂલ આનાથી વધારે આ લોકો ભવ કરે જ નહીં. ખ્યાલ આવે છે? પણ જે નીચેના સ્વર્ગોના છે હજી અહીંયાના, દે કેન સ્ટીલ ડુ ફ્યુ ભવ, પણ એ થોડા ભવોમાં મોક્ષે જાય જ છે. અહીંયા નવમી ગ્રહવેગ સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ જઈ શકે છે. એટલે નવમી ગ્રહવેગ એટલે શું છે? અહીંયા ધેર આર 9 લેયર્સ, અને દરેક લેયર્સમાં ધેર આર ફ્યુ વિમાન, ઘણા વિમાનો છે. ખ્યાલમાં આવે છે? તો નવમી ગ્રહવેગ એટલે નવમું લેવલ, ત્યાં સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ જઈ શકે. હવે એ નવમી ગ્રહવેગ એટલે ખાલી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એમ નહીં, વિથ વન મિથ્યા દ્રષ્ટિ ધેર આર અસંખ્યાત સમ્યક દ્રષ્ટિ. ખ્યાલમાં આવે છે? પણ જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ આગલા ભાવમાં મુનિરાજ હોય, મુનિ દીક્ષા લીધી હોય, ઘણા તપ કર્યા હોય, એટલું શું એમનું શુભ આચરણ હોય ગુરુદેવ શ્રી કહે ને એમના પ્રવચન માં કે એમના ચામડા ઉખાડી નાખે અને ઉપર ખાર છાંટે એટલે સોલ્ટ નાખે તો આપણે કે વાયગું હોય અને ઉપર સોલ્ટ પડે ને તો બહુ બળે. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ હેવ એક્સપિરિયન્સ, ટ્રાય ઇટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઈધર ટ્રાય સોલ્ટ ઓર ટ્રાય લેમન, એ ત્યાં વાગ્યું હોય ને ત્યાં બહુ બળતરા થાય. તો એ મુનિરાજને આખા બોડી પર પણ તમે એવું કરો તો પણ એમને અંદરથી ગુસ્સાનો વિચાર પણ ના આવે, એટલા શુભ આચરણ હોય મુનિરાજના. તો એવા આચરણના ફળમાં એટલા તીવ્ર કર્મનો બંધ થાય છે કે નવમી ગ્રહવેગ સુધી જાય છે. ઓકે, આ તો મેં ખાલી મેકેનિઝમ સમજાવ્યું. નાઉ નવમી ગ્રહવેગ સુધી જે મુનિરાજ જાય છે એમાં આપણે બધા ઘણી વાર જયા એવા પાંચ પ્રકારના પરાવર્તન છે. નામ સાંભળ્યું છે આપણે જે સંસાર ભાવના જોઈ ને એમાં જોયું કે જીવ ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરે છે અને અનાદિકાળથી ભ્રમણ કરે છે. તો કેટલો કાળ ગયો કે જેમાં પાંચ પ્રકારના પરિભ્રમણ અથવા પરાવર્તન કરે છે અને એ પણ અનંત કરી લીધા છે, ખ્યાલ છે? તો એમાં એક ભવ પરાવર્તન છે. ભવ પરાવર્તનમાં શું કહે છે કે જીવ ચાર ગતિમાં એના લોએસ્ટ આયુષ્યથી લઈને જીવ ચાર ગતિમાં દરેક ગતિમાં એના લોએસ્ટ આયુષ્યથી લઈને મેક્સિમમ આયુષ્ય સુધી વારાફરતી જન્મ લે અને એનું કાઉન્ટિંગ આપણે કરીએ તો એને એક ભવ પરાવર્તન કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિરિયન મનુષ્ય નરક દેવ, નોટ ઇન એની ઓર્ડર પણ એમ જ સમજો. તો દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થવા માટે મિનિમમ આયુષ્ય ઇઝ 10,000 યર્સ. 10,000 યર્સ ઇઝ મિનિમમ. અને મેક્સિમમ કેટલું હોય? 33 સાગર. પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને 31 સાગર. 31 સાગર ઉપરના દેવો જે 33 સુધી જાય, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ 31 સુધી જાય. હવે જનરલી એવું હોય કે આ જે નીચે લોઅર આયુષ્ય વાળા હોય ને નીચેના હોય અને જે હાયર આયુષ્ય વાળા હોય ઉપરના હોય, રાઈટ? તો હવે 10,000 થી લઈને 31 સાગર સુધી જન્મ લેવા માટે મનુષ્ય આપણે બધાએ અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી વારાફરતી જવું પડે કે નહીં? તો આવું આપણે અનંત વાર જયા એવા છે, ખ્યાલ આવે છે? ઇનફેક્ટ એમ વિચાર કરો કે ઇફ યુ હેવ ટુ ડુ ઇવન ટુ કન્ઝિક્યુટિવ, કન્ઝિક્યુટિવ એટલે કે કાઉન્ટિંગમાં કન્ઝિક્યુટિવ, દેવ પછી દેવ જન્મ ન થાય, પણ સપોઝ આપણે 31 સાગર વાળો જન્મ લેવાનો છે અને એની જસ્ટ ઇમિડિયેટલી પહેલા વી હેવ ટુ ટેક 1 સમય ઓછું, રાઈટ? એટલે ઓલમોસ્ટ 31 સાગર વાળા બે ભાવ લેવાના છે. તો જીવે અહીંયા જવું પડે, પછી ત્યાંથી પાછા મનુષ્ય થવું પડે, પછી ઇમિડિયેટલી પાછા કઈ બીજા ભાવમાં એવા ભાવ થાય જ નહીં, એટલે પાછું બધે ફરી આવે, પછી બહુ વખત પછી પાછા મનુષ્ય થાય, પાછા એવી રીતના જ દ્રવ્યલિંગી થાય, પાછું એવા જ શુભ પરિણામ હોય જે ઓલા કરતા એક સમય બેટર થાય, તો જઈને પાછા અહીંયા બીજી વાર આવે. એટલે યુ કેન ઇમેજિન કે ટાઈમ તો જતો જ જાય, ધેર ઇઝ નો કાઉન્ટિંગ ફોર ટાઈમ. હમણાં નિમેશભાઈ પૂછતા હતા, આપણે છે ને જે એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિય એટલા જીવ હોય ને, તો બે ઇન્દ્રિયથી પાંચ ઇન્દ્રિયમાં આવવા માટે મેક્સિમમ ટાઈમ ટુ સ્પેન્ડ ઇન ધીઝ પર્યાય ઇઝ 2,000 સાગર. એના પછી તો જીવ એક ઇન્દ્રિયમાં વયો જ જાય પાછો, રાઈટ? હવે આનું જ આયુષ્ય 31 સાગર છે, યુ ઓનલી હેવ 2,000 સાગર. એમાં પણ તમારે મનુષ્ય પર્યાય તો બહુ ઓછી મળે અને યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ 2 ટાઈમ્સ. અને જો ન કરો તો એકેન્દ્રિયમાં વયા જાય અને એકેન્દ્રિયમાં તો પછી ઘણા ટાઈમ સુધી રહે, ખ્યાલ આવે છે? એટલે ટુ ડુ ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે આવા પણ ભાવ જીવે અનંતવાર કર્યા છે. ફરીથી જો ગાથા ઉપર આવી ગઈ આપણે, અંતિમ ગ્રીવક લોકી હદ, એટલે કે અંતિમ ગ્રહવેગ સુધીની પણ હદ એટલે બાઉન્ડ્રી, અંતિમ ગ્રહવેગ સુધીની બાઉન્ડ્રી પણ पायो अनंत वीर्या पद आवा पद पण मैं अनंत वार प्राप्त कर्या छे पण सुन थयो सम्यक ज्ञान न लागे। आ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ने सम्यक चरित्र प्राप्त करवा એ ઘણા દુર્લભ છે, કેમ કે અનાદિકાળ થી આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત જ નથી કર્યા, એની બદલે આપણે આટલું બધું ઘણી વાર ફરી આવ્યા તો પણ આપણે હજી સંસારમાં જ પરિભ્રમણ કરીએ છીએ। અને આવી દુર્લભ વસ્તુ દુર્લભ નિજ મે મુનિ સાધો મુનિરાજ છે એ આવી દુર્લભ વસ્તુ પોતાના આત્માની અંદર એની સાધના કરે છે, સમજાય છે? સી ધેર આર ટુ વેઝ ઓફ થિંકિંગ। ફર્સ્ટ વે ઇઝ કે આપણે સમ્યક દર્શન ક્યારે પ્રાપ્ત નથી કર્યું, અનાદિકાળથી પ્રાપ્ત નથી કર્યું, વર્સિસ ઓન ધી અધર સાઈડ થિંક ઓફ એની એક્સટર્નલ થિંગ જે આપણને જોઈતી હોય તો આઈ એમ શ્યોર વી વુડ હેવ ડન ઇટ સમ ટાઈમ ઇન ધ પાસ્ટ। કે આપણે ક્યારે ફિશ બન્યા છે તો હા થયા છે, આપણે ક્યારે એવું રેટ બન્યા છે તો હા બન્યા છે, સમજાય છે? આપણે ક્યારે હ્યુમનમાં કિંગ બન્યા છે તો ઘણી બધી વાર બન્યા, સમજાય છે? એવી કોઈ અવસ્થા નથી જે આપણે મનુષ્ય પર્યાયમાં એક્સટર્નલી પ્રાપ્ત ન કરી હોય, તો એ એક્સટર્નલ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી તો બહુ જ ઇઝી છે, પણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવું બહુ જ દુર્લભ છે। દુર્લભ એટલે કે ઇટ ઇઝ વેરી રેર, ખ્યાલ આવે છે? નાઉ ધેર ઇઝ અ ફ્લિપ સાઈડ ઓફ થિંકિંગ। ફ્લિપ સાઈડ ઓફ થિંકિંગ ઇઝ કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવું હોય તો યુ ડોન્ટ નીડ એની એક્સટર્નલ સામગ્રી, સમજાય છે? જીવ પોતાના જ વિચારથી એટલે પોતાના જ જ્ઞાનથી પોતાના જ આત્માનો વિચાર કરવાનો છે અને પોતાના વિચારોમાં જે અનુભવો કરી લે છે, તો ટુ ડુ અનુભવ ઇઝ ઇઝીયર દેન ઇવન મેકિંગ અ ટી। કેમ કે ટી બનાવવા માટે તો યુ નીડ ફાઈવ ડિફરન્ટ થિંગ્સ। ભાઈ આગળ આવજો, આગે આવજો, આગે પહોંચે, સમજાય છે? ટી બનાવવા માટે યુનિટ ફાઈવ ડિફરન્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, યુનિટ સ્ટફ, યુનિટ યુ નીડ ટુ ટેક એફર્ટ, વેર એઝ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું એનાથી બહુ જ ઇઝી છે, સમજાય છે? અનાદિકાળથી પ્રાપ્ત નથી કર્યું એટલે ઇટ ઇઝ દુર્લભ, ઇટ ઇઝ રેર, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ, ખ્યાલમાં આવે છે? ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ એટ ઓલ। તો માટે દરેક જીવે, મુનિરાજ તો કરે જ છે આ 12 ભાવનાઓનું ચિંતન, પણ દરેક જીવે 12 ભાવનાઓનો વિચાર નિરંતર પોતાના વિચારોમાં કરવો જોઈએ, જેનાથી શું થાય, આપણા સ્પેશિયલી આપણા લેવલ પર શું થાય, વી આર સો મચ બિઝી ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ કે વી આર સો અટેચ ટુ અવર સરાઉન્ડિંગ, આવો વિચાર કરવાથી એ આપણને આપણું જે અટેચમેન્ટ છે ને થોડું ઢીલું પાડે છે અને ઢીલું પાડવાને કારણે આપણો એના પરથી મોહ રાગ દ્વેષ ભાવ ઓછા થાય છે, તો ઓછા થવાને કારણે જીવ પોતાના આત્મા તરફ પાછો વળે, સમજાય છે? એના માટે જીવે આવા વિચાર નિરંતર કરવા, આ છે બોધિ દુર્લભ ભાવ। જો આપણે એનો ભાવાર્થ વાંચીએ છે પેજ 153, હા વાપસ ઇંગ્લિશ મેં, સી ઓલ ઓફ અસ આર સો બિઝી ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ ટુ એન એક્સટેન્ટ કે હર 5 મિનિટ મેં અરે વોટ્સએપ આયા કે કુછ આયા કે, સો વી આર સો ફિજિટી કે વી આર કોન્સ્ટન્ટલી થિંકિંગ અબાઉટ વન થિંગ ઓર ધી અધર બટ વિથ અ આઉટસાઇડ ફોકસ, દેટ ઇઝ વન। સેકન્ડ, બિકોઝ વી આર ઓલવેઝ લુકિંગ આઉટસાઇડ વી આર અટેચ ટુ એન્ટિટીઝ સરાઉન્ડિંગ અસ, ઇટ મે બી અવર ફેમિલી, ઇટ મે બી અવર હોમ, અવર વેહિકલ, અવર ડ્રેસીસ, વોટ એવર, અવર બોડી, સો વી આર ઓલવેઝ અટેચ ટુ દી, ટુ રિડ્યુસ ઇઝ અટેચમેન્ટ ઓર ટુ બ્રેક ઇઝ અટેચમેન્ટ વી શુડ થિંક અબાઉટ 12 ભાવના કોન્સ્ટન્ટલી। 12 ભાવના ક્યાં હૈ? એ જીવ જો બહાર મેં અલગ અલગ સંયોગો સે જુડા હુઆ હૈ, જો અટેચમેન્ટ ક્યાં હુઆ હૈ, વહાં સે દૂર હોકે અપને આત્મા કે વિચાર મેં આયેગા, સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ હિઝ ઓન સોલ, ઓન આત્મા, ઓન જ્ઞાન દર્શન આદિ જેના ઉનકે ગુણ હૈ, વો બાય થિંકિંગ દેટ ધી external attachment gets wider, it gets reduced, and jeev comes in proximity of oneself. By doing that constantly, you are closer and closer to oneself. Then you can think about jeev, and then you can come closer to samyak darshan. See, what is samyak darshan? It is said, हम कहते हैं ना कि अपने मनुष्य पर्याय में एकमात्र कर्तव्य अगर कुछ है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बराबर। तो अगर एकमात्र कर्तव्य वो है तो उसके लिए प्रयास, उसके लिए व्हाट इज द वे टू अचीव इट, टू अचीव इट यू ओनली हैव टू डू तत्व विचार। मोक्षनाथ प्रकाशक में टोडरमल जी कहते हैं कि जीव का कर्तव्य क्या है, कि शास्त्र में से जो जीव के बारे में पढ़ा, जो अन्य द्रव्य के बारे में पढ़ा, जो सात तत्व आदि के बारे में पढ़ा, जो देव शास्त्र गुरु के आदि में उनके बारे में जो हमने पढ़ा है, उसका विचार करके ये सही है कि नहीं, वो अपने आप में प्रूव करे। आप यहाँ एक बोलूँ येलो कार्पेट चल, ये जो चीजें हमने शास्त्र से पढ़ी है, वट एवर वी हैव रेड फ्रॉम शास्त्र, टू थिंक डीपर अबाउट इट एंड टू प्रूव इट टू वन सेल्फ के डज इट मेक सेंस। शास्त्र में तो लिखा है, प्लस वी आर ऑलवेज फोकसिंग आउटसाइड, मतलब वी आर ऑलवेज मीटिंग विद पीपल इन सोसाइटी, वी आर लुकिंग एट थिंग्स सराउंडिंग अस, डज दिस मेक सेंस वर्सेस दैट, क्या ये आपको सही लगती है कि नहीं, ये विचार करना, इसको कहते हैं तत्व विचार। तत्व विचार करके मैं जीव हूं कि नहीं, ये मेरे राग द्वेष आदि परिणाम मुझे दुखी करते हैं कि नहीं, ये सब विचार करके दृढ़ निश्चय करना कि नहीं मैं ऐसा ही हूं, यही दुख के कारण है, आत्मा के अनुभव से सुख होता है, ये सब विचार करना, इसको कहते हैं तत्व विचार। यही करने से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इन आवर रिलीजन, सी इफ यू आस्क एनी नॉर्मल पर्सन आउटसाइड व्हाट इज जैनिज्म, व्हाट विल दे से, हाँ जैन्स डोंट ईट इन द इवनिंग, दे डोंट ईट अनियन गार्लिक पोटेटोज, दे फॉलो सम उपवास आदि, उनके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे वो करते हैं। टू एन एक्सटर्नल पर्सन ओनली दोज थिंग्स आर विजिबल, बट द रियल क्रक्स ऑफ फिलोसफी इज इन अंडरस्टैंडिंग आत्मा, पर द्रव्य क्या है, अपने भाव कैसे हैं, ये अपने विचार में सोचना, विचार करना, दिस इज द क्रक्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो इन दी थॉट प्रोसेसेस जो मुनिराज बारह अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं, उसे बारह भावना कहते हैं। वो बार भावना मतलब कि वॉट काइंड ऑफ थॉट मुनिराज इज थिंकिंग अबाउट, तो उनके थॉट अबाउट ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के हाउ दुर्लभ, हाउ रेयर इट इज कॉल्ड बोधि दुर्लभ भाव। मुनिराज भी ऐसा विचार करते हैं कि सी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र इज सो डिफिकल्ट टू गेट, इतने काल में मैंने प्राप्त नहीं किया था और अब मुझे प्राप्त हो गया है, सो इट इज लाइक अ जूल, आई शुड नॉट लूज इट, इसलिए निरंतर ये विचार मुनिराज करते हैं। क्लियर? ओके, देखिए अभी उसका भावार्थ अपने भावार्थ वाचिए। कितने लोगों को गुजराती बिल्कुल समझ में नहीं आती? ओके, आई ट्राई टू मिक्स इट अप। यस यस, ओके, सी वी आर रीडिंग भावार्थ नाउ। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय, मिथ्या दृष्टि जीव मन कषाय ने कारणे अनेक वार ग्रहवेग सुधी पैदा थईने अहम इंद्र पद पाम्यो छे। देखिए कषाय एक चीज होती है, कषाय क्या होता है, कषाय क्या होते हैं, जोर से बोलिए, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। जीव के ऐसे परिणाम जो अपने आत्मा को कसे, उसे दुखी करे, उसे कषाय कहते हैं। इसके चार प्रकार है, क्रोध मान माया लोभ, बराबर। अभी कषाय के परिणाम या तो तीव्र हो सकते हैं या मंद हो सकते हैं, बराबर। जब तीव्र कषाय होता है तो हम सबको पता चलता है कि भाई बहुत गुस्सा आ गया, या मुझे किसी के ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है, ये भी तीव्र कषाय है। पता है, अभी संजय जी आए थे अष्टानिका में, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, दो बूंद आंसू, याद है किसी को? इट वॉज अ स्टोरी अबाउट ए फार्मर एंड हिज सन। द फार्मर्स फैमिली वे वेरी पुअर, तो उसकी वाइफ हर जगह मेहनत करके रोटियां वगैरह जमा करके बनाती। तो वन फाइन डे द गाइज डोंट थिंक अबाउट सो मच, वन फाइन डे द फार्मर एंड हिज सन केम फ्रॉम वर्क एंड दे वर वेरी हंग्री, सो दे एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। शी मेड एट रोटी, उसमें से सेवन एंड हाफ तो खा गए, सिर्फ आधी बची। So the mother, she was actually weeping के we are so दुखी and etc. तो उसके आंसू गिरे और वो रोटी को उसने आंसू के साथ खाया, लेकिन उसने ये नहीं बताया अपने हस्बैंड और इनको कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं। द पॉइंट इज के ये मदर का अपने सन और अपने हस्बैंड के प्रति जो राग है, ये तीव्र कषाय है क्या मंद कषाय है? ये तीव्र राग का भाव है, ये तीव्र कषाय है, इसमें तीव्र कर्म बंध होता है। क्या लगता है? तो जैसे भी ये क्रोध है, क्रोध और मान के परिणाम है ना, वो थोड़े द्वेष रूप परिणाम, और माया और लोभ के परिणाम थोड़े राग रूप परिणाम, मतलब अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन ये चारों कषाय के परिणाम है। जब जीव ये कषाय के परिणाम तीव्र करता है तो बहुत कर्म बंध करता है, लेकिन जब मंद परिणाम करता है, मंद मतलब क्या, कि सेटिस्फाइड जीव है, जनरली सेटिस्फाइड है, कम पैसे में भी सुखी है, परिणाम भी उसके शांत है, कुछ ज्यादा क्रोध वगैरह नहीं करता, सरल परिणाम ही है, कोई माया भाव नहीं है उसको, जैसा परिणाम है वैसा ही मुंह से बोल देता है, और एक सामान्य जीव की तरह रहता है, ज्यादा मान कषाय भी नहीं है, एकदम मंद परिणामी है, तो इसे मंद कषाय कहते हैं। जो मंद कषाय है उसको जनरली पुण्य के भाव भी कहते हैं। सी मंद कषाय, कषाय इज इन जनरल अ नेगेटिव वर्ड, राइट, के जीव को कसने वाले परिणाम है, तो नेगेटिव है ना, लेकिन मंद नेगेटिव परिणाम दे आर कॉल्ड पुण्य। इट इज अ लिटिल मिसनोमर, इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग के मंद नेगेटिव परिणाम आर कॉल्ड पुण्य, ठीक है, और तीव्र कषाय के जो परिणाम है उसे कहते हैं पाप। मतलब तीव्र नेगेटिव है तो उसको तो पाप कहते हैं, दैट एवरीबॉडी अग्रीज, लेकिन जो माइल्ड नेगेटिव है उसको पुण्य कहते हैं। दिस जनरली वी डोंट थिंक अबाउट, जनरली वी थिंक अबाउट पुण्य इज पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली पुण्य के परिणाम भी नेगेटिव है, क्योंकि वो कर्म बंद होता है और चार गति में घुमाते ही है,
कषाय तो होगा ही, मंद है।
एग्जैक्टली। तो जीव को जब ऐसे मंद कषाय के परिणाम होते हैं तो वो जनरली पुण्य के फल में देव गति में जाता है और वो भोगों के भोग भोगता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और ग्रहवेग तो हमने देख लिया, अहम इंद्र क्या होता है? अहम इंद्र क्या होता है किसको पता है? देखिए, ये जो 16 स्वर्ग हमने देखे थे, ये 16 स्वर्ग है, ऊपर 9 ग्रहवेग है, फिर 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर, ठीक है। ये 16 स्वर्ग तक तो देवों में भी फैमिलीज होती है, जैसे हमारी फैमिलीज होती है ना, सॉरी ग्रहवे किडला, दिस इज ग्रहवे स्टेप, इट इज अ लेवल ऑफ स्वर्ग, इज कॉल्ड ग्रहवे। तो यहाँ पे इंद्र होता है, उसका एक काउंटर पार्ट होता है प्रति इंद्र, फिर उसके लोकपाल मतलब सेनापति टाइप होते हैं, उनकी रानियां होती है, उनके सेवक होते हैं, सैनिक होते हैं, आम देव जनता होती है, जैसे कोई राज्य में आम प्रजा होती है ना, वैसे स्वर्ग में आम देव होते हैं। ऐसा देर इज अ हायरार्की ऑफ देव इन फर्स्ट 16 स्वर्ग। ऊपर जाने के बाद कोई हायरार्की नहीं, everyone is Indra. Everyone is Indra. Everyone is self owner in a way. So उसको अहम इंद्र बोलते हैं. अहम मतलब मैं इंद्र, हम इंद्र. ठीक है, तो ऊपर के स्वर्ग में सभी अहम इंद्र ही है. तो क्या कहते हैं कि जब मन कषाय के परिणाम मैंने किए थे तो ऊपर नौवे ग्रह तक जाके अहम इंद्र पद मैंने प्राप्त किया, परंतु तेने एक वक्त पण सम्यक ज्ञान प्राप्त करियो नहीं, एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया. कारण के सम्यक ज्ञान पामवू ते अपूर्व छे, तेथी तेने तो स्व सन्मुक्ताना अनंत पुरुषार्थ वडे ज प्राप्त करी शकाय. सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अपूर्व है, क्योंकि पहले कभी प्राप्त नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक जो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए था सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमने तो अलग ही टाइप का पुरुषार्थ किया. समझो कि आपको, हमको भूख लगती है ना, भूख लगती है तो खाना जमा करना पड़ता है. खाना जमा करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे जमा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. लेकिन चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ. क्या मेहनत कर रहा हूँ? यहीं पे छलांग लगा रहा हूँ. 5 घंटे लगाए, 10 घंटे लगाए, कितने पैसे जमा हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा ना जमा. क्यों? क्योंकि जो मेहनत करनी चाहिए थी वो तो नहीं की, हमने अलग प्रकार की मेहनत की. तो जो पुरुषार्थ करना चाहिए था सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो हमने आज तक किया ही नहीं. अपनी अभी तक की लाइफ देख लेते हैं, हमने अभी तक क्या किया? पहले जब छोटे थे तो खूब खेले, फिर खूब पढ़ाई की, कुछ कुछ अभी पढ़ रहे हैं. अभी जिसने पढ़ लिया वो अभी जॉब कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है. तो सब कुछ खूब किया, लेकिन क्या इससे सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं होगा. क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान किससे प्राप्त होता है? अपने आत्मा का विचार करने से, जो हमने अभी बात की ना, तो वो तो हमने किया ही. हमारा दृष्टिकोण, जो देखने की दृष्टि है, हमेशा बाहर की तरफ ही है. अंदर तो कभी हमने देखा ही नहीं. अब हम कौन है उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं. तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ ही, और यही सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है. तो हमें आज तक कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त हुआ नहीं. तो कैसे होगा? स्व सन्मुक्ताना अनंत पुरुषार्थ वडे. स्व सन्मुक्ता मतलब क्या? स्व मतलब सेल्फ, सन्मुक्ता मतलब टुवर्ड्स माई सेल्फ. जब मेरा ये विचार अपने आप की तरफ ही आएंगे तो उसके पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होते हैं. अने तेम तथा विपरीत अभिप्राय आदि दोषों नो अभाव थाय छे. ऐसा होने से जो अभी तक मेरी गलत मान्यता थी कि ये शरीर मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरी दादी है, ये सब अभिप्राय का नाश होता है. तो क्या नहीं है ये मम्मी पापा, ये दादी वगैरह? नहीं है, ठीक है तो सही. लेकिन हाँ, वो जो बात करने की दृष्टि है, वो जो व्यवहार की दृष्टि है, कि भाई हाँ ये मनुष्य गति में ऐसा ऐसा है, वो जानने योग्य है. लेकिन मानने लायक क्या है? मानने लायक ये है कि ये सब स्वतंत्र जीव है, मैं एक स्वतंत्र जीव हूँ, ये पुद्गल आदि सब स्वतंत्र पुद्गल परमाणु है, सब अपना परिणमन स्वयं कर रहे हैं, ऐसा मानने योग्य है. तो जब ऐसा जीव मानने लगता है तो अपने आप को बस एक जीव मानता है, और उसका काम क्या है? जानना. देखना, ऐसा विचार करने पर उसको सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, सही जानना होता है. नेक्स्ट, सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा ना आश्रय स्थाय छे. आत्मा के आश्रय से होता है. पुण्य थी, शुभराग थी, जड़ कर्म थी, थाय एवं ते नहीं, ये हमने सब देख लिया. आ जीव बाहर ना संयोगों, चारे गति तथा लौकिक पदों, ये जीव ने बाहर के संयोग, चार गति, लौकिक सभी पद अनंत बार प्राप्त कर लिए हैं, पर निज आत्मानो असली स्वरूप स्वानुभव वड़े प्रत्यक्ष करीने कभी समझियो नहीं. अपने आत्मा का सही स्वरूप ये मैं हूँ ऐसा मान के हमने कभी जाना नहीं है. माटे तेनी प्राप्ति અપૂર્વ છે, લૌકિક કોઈ પણ પદ અપૂર્વ નથી, લૌકિક મેં કોઈ ભી પદ અપૂર્વ નહીં હૈ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ભી હમ હોતે હૈ. અપૂર્વ મતલબ પૂર્વ નહીં, પહેલે કભી પ્રાપ્ત નહીં કિયા એસા. લૌકિક મેં એસા કોઈ પદ નહીં. હા કુછ કુછ હૈ લૌકિક મતલબ સોશિયલ સરાઉન્ડિંગ ઇન જનરલ એક કોલોક્વિયલ બોલતે. અચ્છા તો યે ઇસકા નામ ક્યા હૈ ભાવના કા? બોધિ દુર્લભ ભાવના. બોધિ મતલબ ક્યા? બોધિ ये चाइना में पता है बोधि धर्मन करके एक मॉन्क बहुत फेमस है, पता है आपको? कि इन दी ओल्डन हिस्ट्री एक राजा था, वो राजा उसका नाम कुछ तो था. देन ही वॉज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड गाय इन फाइटिंग एंड ही हैड लॉट ऑफ आयुर्वेदा एंड मेनी मेडिसिनल नॉलेज. तो वो वहाँ पे गया, अभी वहाँ पे कोई गांव में गया, वहाँ पे लोग बहुत बीमारी से दुखी थे तो उसने उसका इलाज किया, कोई दुश्मनों से बचाया, तो ही बिकेम अ पॉपुलर गाय. तो वहीं पे वो लोगों को विद्या वगैरह सिखाने लगा, हाउ टू फाइट, हाउ टू मेक मेडिसिन ऑल वो सब. तो वहाँ पे उसको उन्होंने मॉन्क बना दिया. ठीक है, अभी वो जनरली अहिंसावादी था तो लोगों को अहिंसा वगैरह पसंद आई, तो वो लोग ने उसको एज अ धर्म गुरु बना लिया. समझ में आ रहा है? और फिर वहीं पे वो स्प्रेड होते गया होते गया होते गया, द फिलोसफी गॉट स्प्रेड, इट बिकेम अ रिलीजन. इट इज नॉट एग्जैक्टली बुद्धिज्म, लेकिन सम ऑफ द थॉट्स आर वेरी सिमिलर. तो वहाँ पे आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक ऐसा वो एक टकलू एक दाढ़ी वाला ऐसा कोई मॉन्क का फोटो आता है, दे कॉल इट बोधि धर्म. द पॉइंट इज बोधि मतलब ज्ञान. ये उसने वो राजा ने उनको ज्ञान बांटा, तो दे वर्शिप्ड हिम लाइक अ गॉड, जो बिल्कुल गलत है. लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, बोधि मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, या तो सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रत्नत्र. ऐसा ज्ञान हमने अनादि से कभी प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसको दुर्लभ कहते हैं. दुर्लभ मतलब रेयर. ठीक है, तो ये बोधि इतनी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि अनादि से हमने प्राप्त नहीं. अभी इसमें सम्यक चारित्र की भी थोड़ी बात है ना, इसलिए जनरली मुनिराज की बात होती है. मुनिराज चारित्र में आगे है, सम्यक दृष्टि जीव का अभी कोई चारित्र है नहीं, आवृत्ति है ना. लेकिन मुनिराज का चारित्र भी सकल चारित्र है, इसलिए जनरली वेन वी स्पीक अबाउट बोधि दुर्लभ भावना इट इज मेनली अप्लाइड ऑन मुनिराज. तो बोधि एटले निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता. निश्चय सम्यक ज्ञान चारित्र मतलब बोधि. ते बोधि की प्राप्ति दरेक जीवे करवी जोइए. मुनिराज कैसा सोचते हैं? आपको पता है जब भी कोई जीव तीर्थंकर होता है तो वो तीर्थंकर पद बांधने के लिए कैसे विचार करता है, उसके लिए एक टर्म है, किसी को पता है? हाँ वेरी गुड. वो एक एक टाइप की एक टाइप का विचार. जब भी कोई मुनिराज 16 प्रकार के अलग अलग विचार करते हैं उसको षोडश कारण भावना बोलते हैं. सुना होगा ना षोडश कारण भावना? कोई मुनिराज एवा 16 प्रकार ना अलग अलग विचार करे छे, 16 कारण भावना का विचार करते हैं. जैसे सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो, ये विश्व में कभी कोई दुख ना रहे, कोई दुर्भिक्ष न रहे, मतलब ये फेम और क्या दुकाड़ वगैरह के बाद, हाँ ड्राउट और फेमिन या ऐसा कुछ विश्व में ना रहे, ऐसा वो मुनिराज के विचार चलते हैं. क्योंकि उनको सभी जीव के कल्याण की भावना है, उनको कोई ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं है कि 6 महीने में 600 आठ ही जाएंगे तो सभी का क्यों कल्याण हो. लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा है, तो उनके विचार में ऐसा है कि सभी जीवों का कल्याण हो, वैसे भावों से तीर्थंकर गोत्र बनता है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बनती है. तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये बोधि की प्राप्ति दरेक जीवे करवी जोइए, सभी जीव को ऐसी प्राप्ति हो. सम्यक दृष्टि जीव स्वसन्मुखता पूर्वक आवू चिंतन करे छे। सम्यक दृष्टि जीव अपना विचार करते हुए ऐसा भी विचार करता है कि सबका कल्याण अने पोतानी बोधीनी वृद्धिनो वारंवार अभ्यास करे छे। और ऐसा भी सोचता है कि ये जो रत्नत्रय प्राप्त हुआ है वो इतना दुर्लभ है तो इसका निरंतर इनका विकास हो, ये कभी मुझसे छूटे नहीं। ऐसा अभ्यास करते हुए मतलब ऐसा विचार करना ते बोधि दुर्लभ भावना छे। ऐसा विचार करना हो बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारहवीं लास्ट भावना इज कॉल्ड धर्म भावना। बोलिए धर्म किसे कहते हैं? हम जैन धर्म को फॉलो करते हैं ना, तो धर्म किसे कहते हैं? बोलिए आपको क्या लगता है धर्म किसे कहते हैं? रिलीजन धर्म वो तो समानार्थी शब्द हो गए, लेकिन उसका मतलब क्या?
जो हमें सिखाता है हमें हाउ टू लिव।
हाउ टू लिव, चलो वेरी गुड। धर्म मतलब जो हमें बताता है कैसे जीना चाहिए। बोलिए और कोई? बिलीव, धर्म मतलब बिलीव। ठीक है, और कोई? सत्य मार्ग पर चलना। ठीक है, देखिए अपने शास्त्रों में क्या कहा है, धर्म अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन है चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और ये प्रवचन सार में वो भी कहा है कि साम्य वो धर्म है। साम्य मतलब कि समता भाव, समता भाव वो धर्म है। इसका मतलब क्या है? ये जो देखिए हमने सब जो अलग अलग बातें की ना, वो सब अलग अलग एंगल सोचने के हैं। जब हम नॉर्मल डे टू डे लेवल पे सोचते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि धर्म ऐसी चीज है जो हमको जीना सिखाता है, जो हमको प्रिंसिपल सिखाता है, वैल्यू सिखाता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ते हैं तो वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है चारित्र। चारित्र मतलब सम्यक चारित्र। फिर से थोड़ा वो देखते हैं, बेसिक्स में जाते हैं। देखिए जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य उसके तीन गुणों की हम बात करेंगे। वैसे तो अनंत गुण है लेकिन तीन गुण की बात करेंगे। कौन से है वो गुण? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा गुण का क्या फंक्शन है? टू बिलीव, मानना। मतलब जीव द्रव्य कुछ ना कुछ तो हमेशा मानेगा। ठीक है, मतलब मानेगा मतलब कि मैं कौन हूं वो विषय में मानेगा कुछ ना कुछ, या तो शरीर को अपना मानेगा या अपने आत्मा को अपना मानेगा। ठीक है, ज्ञान गुण का क्या फंक्शन है? जानना। अपने आजू बाजू जो भी है या आजू बाजू नहीं भी है लेकिन अपने विचारों से किसी को जानना। चारित्र गुण का फंक्शन क्या है? मुझे यहाँ पे लेके आना। चारित्र इज कैरेक्टर वर्ड दैट इज इन जनरल वर्ड्स। धार्मिक क्षेत्र में चारित्र का मतलब है लीन का, मतलब लीन रहना। लीन रहना मतलब क्या? जैसे हम कोई चीज ऐसी करते हैं जो हमें बहुत पसंद है तो हम उसमें डूब जाते हैं ना, उसके विचारों में खो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीन हो गए। किसी के बारे में सोचना वो तो है जानना, लेकिन सोचते ही रहना और उसमें खो जाना वो है चारित्र। क्लियर? अपने लाइफ में ये सब प्रोसेस होते ही रहते हैं, सो यू कैन फील इट बाय योरसेल्फ कि कोई भी विषय में अगर हम सोचते हैं तो इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और 4-5 सेकेंड हम खो जाते हैं ना उसमें, दैट इज फंक्शन ऑफ चारित्र। अभी यहाँ चारित्र खलु धर्मो, मतलब चारित्र ही धर्म है, तो लीन रहना ही धर्म है। लेकिन किसमें लीन रहना धर्म है? दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन राइट। तो अपने आत्मा के अनुभव में लीन रहना वो ही वास्तविक धर्म है। ठीक है, अपने आत्मा को जानना मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये ही मैं हूं ऐसा मानना, ये सम्यक दर्शन, और उसी में लीन रहना वो है सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ये उसकी पर्याय कहते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय पता है आपको क्या है? द्रव्य मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो वस्तु के कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी ना, कुछ तो गुण विशेष होते हैं, उसे कहते हैं गुण। और वो गुणों की वर्तमान में क्या अवस्था है, जैसे ये फोन है, ये फोन में एक कांच है आगे, अपना स्क्रैच गार्ड कांच होता है ना, तो वो कांच एक सब्सटेंस समझ लो अभी के लिए। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज गुण ऑफ कांच। और क्या है प्रॉपर्टी, कि स्क्रैच प्रूफ होना चाहिए, तो स्क्रैच रेजिस्टेंस इज द गुण, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, कि स्मूथ होना चाहिए, अगर रफनेस आ गई तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो उसकी स्मूथनेस या रफनेस, दिस इज द गुण। अभी वर्तमान में उसकी क्या अवस्था है, अगर फोन नया है तो स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है ना। अगर फोन पुराना हो गया तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये वर्तमान में क्या अवस्था है, दैट इज कॉल्ड पर्याय। तो वैसे ही जीव का ज्ञान गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है ना, मेरे में जानने की ताकत है। अभी जैसे मैं इंजीनियर हूँ, कोई डॉक्टर होगा, तो ये तो मेरी कंप्लीट जानने की ताकत होगी ना, कि मेरे में ये ज्ञान है। लेकिन कोई डॉक्टर हमेशा डॉक्टरी के बारे में सोचता है, जरूरी नहीं खाने बैठा है तो खाने के बारे में सोचता है। तो वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, वो उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया? ज्ञान गुण मतलब कैपेबिलिटी टू नो, और ज्ञान पर्याय मतलब व्हाट इज इट एक्चुअली नोइंग राइट नाउ। समझ में आया? तो वैसे ही ये जो तीन गुण हमने देखे, जब जीव मिथ्या दृष्टि है मतलब अपने को शरीर आदि मानता है, तो उसकी श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन पर्याय है। मिथ्या दर्शन मतलब वो अपने को अभी, अपने आप को अभी वो शरीर आदि मान रहा है वर्तमान पर्याय में, ख्याल में आया। और जब उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, वो ऐसा मानने लगता है, तो उसको सम्यक दर्शन पर्याय कहते हैं। मतलब वो अपने को अभी वर्तमान पर्याय में आत्मा मान रहा है, ठीक है। तो हमें तो आना है चारित्र, तो इसकी भी मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र, ये दो पर्याय हैं। मिथ्या चारित्र मतलब क्या, कि जीव वर्तमान में अभी आत्मा को छोड़ के किसी और चीज में लीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी पाठशाला में है तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान उसमें लीन है, ठीक है ना। तो आत्मा को छोड़ के कहीं भी बाहर लीन है तो वो मिथ्या चारित्र। समझ में आ रहा है? जनरल वर्ड, आगे जैसे सूक्ष्मता में जाते हैं तो उसमें फर्क आता है, लेकिन अभी समझने के लिए, जब ही जीव आत्मा में लीन होता है तो उसे कहते हैं सम्यक चरित्र। क्लियर? तो आत्मा में लीन होना वह वास्तविक धर्म है। अभी ये तो वास्तविक धर्म है, तो उसको कहते हैं निश्चय धर्म अथवा तो निश्चय चारित्र। ख्याल में आ रहा है? जहां पे भी वास्तविक की बात हो, एक्चुअली कैसा होना चाहिए, तो उसको कहते हैं निश्चय। तो कहो जो, हाँ, जब भी वास्तविक की बात हो तो कहते हैं निश्चय। लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल सोच के बात की जाए, कोई अलग विशेष अपेक्षा से बात कभी होती है, तो उसको कहते हैं व्यवहार। व्यवहार वो अलग निश्चय, मतलब दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यहाँ पे निश्चय वर्ड का मतलब डिसाइड नहीं है। निश्चय करवू, दैट इज अ वर्ब, इट्स अ वर्ब यूजेज, व्हेरएज दिस इज नाउन यूजेज, ठीक है। तो जैसे वास्तविक धर्म क्या है, कि अपने आत्मा में लीन होना, लेकिन हम क्या बोलते हैं जनरली, कि भाई जैन धर्म कैसे होता है, तो भगवान के दर्शन करने जाओ आपका धर्म होगा, या फिर 10 लक्षण वगैरह में आपको उपवास आदि करने चाहिए जिससे धर्म होता है, ठीक है ना, ये सब एक कहने की अपेक्षा है, कोई पर्टिकुलर विचार करके कोई एंगल से बात की जा रही है, तो उसको कहते हैं व्यवहार धर्म और व्यवहार चारित्र। ख्याल में आ रहा है सबको? ओके, तो अभी बात तो हो रही है मुनिराज की। जो मुनिराज होते हैं वो ये 12 प्रकार की भावनाएं भाते हैं ना, तो मुनिराज का धर्म क्या है, मुनिराज का वास्तविक धर्म क्या है, कि अपने आत्मा में निरंतर लीन रहते हैं। मुनिराज जंगल में रहते हैं ना, क्या करते हैं पूरा दिन, समझो हमको अपनी रूम में बंद कर दिया पूरा एक दिन, क्या करेंगे, थोड़ा कंप्यूटर देखेंगे, कुछ व्हाट्सएप करेंगे, फिर बोर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, सो जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना, सब एक्टिविटीज करेंगे। मुनिराज क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है चलो, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन कितने टाइम करेंगे, और भी कुछ करेंगे ना। देखो जैसे हम ये सब एक्टिविटीज में होते हैं कि हम कभी फोन करते हैं, कभी व्हाट्सएप करते हैं, कभी कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी हमारे अंदर में विचार क्या चलते हैं, तो देखो मम्मी ने मुझे बंद कर दिया, या फिर देखो मैंने ये गलत किया तो मुझे बंद कर दिया, या अभी मैं क्या करूँ, मुझे बहुत बोर हो रहा है, ये विचार अंदर से अपने ऐसे चलते हैं। एक विचार का एंगल है और एक बाहर का एक्शन का एंगल है। बाहर के एक्शन में अगर आप व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको मम्मी ने पनिशमेंट की वजह से बंद कर दिया है, तो विचार में तो यही चल रहा है कि देखो मम्मी ने बंद कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। मुनिराज का बाहर का एक्शन का एक लेवल अलग है और विचार का लेवल अलग है। एक्शन में क्या करते हैं मुनिराज, कि कभी तो ध्यान में खड़े हैं, या कभी ध्यान में पद्मासन में बैठे हैं, कभी आहार का विकल्प आया तो आहार लेने जा रहे हैं, या कुछ 24 तीर्थंकर आदि की स्तुति गा रहे हैं, प्रायश्चित आदि कर रहे हैं, सामाजिक आदि कर रहे हैं, ये सब बाहर की एक्शन। विचार लेवल पे क्या करते हैं मुनिराज, विचार लेवल पे निरंतर अपने आत्मा में लीन होते हैं। कोई भी एक्शन होने दो, खाना खा रहे हैं तो भी आत्मा में लीन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम ध्यान करने भी बैठते हैं तो भी विचार लेवल पे घूम रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बराबर है कि नहीं। दर्शन भी कर रहे हैं भगवान के तो भी साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। जबकि मुनिराज का कंप्लीटली ऑपोजिट है, बाहर के एक्शन में अगर ध्यान कर रहे हैं तभी तो ध्यान ही कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर के एक्शन में आहार आदि कोई अलग क्रिया में भी है तो भी ध्यान कर, समझ में आ रहा है। तो मुनिराज का वास्तविक धर्म क्या है, कि अपने आत्मा में निरंतर लीन रहते हैं, ये उनका निश्चय धर्म है, समझ में आ रहा है। व्यवहार से मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल से अगर समझाना है तो उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। तो व्यवहार से मुनिराज के 10 धर्म कहने में आते हैं। आपने सुने हैं 10 धर्म, 10 लक्षण हम कहते हैं ना, 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण पर्व पर्युषण, तो उसमें हम 10 धर्म सेलिब्रेट करते हैं। नाम सुने होंगे ना कभी, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये मुनिराज के व्यवहार से धर्म है। मतलब मुनिराज अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में लीन है तो उनको किसी और के विषय में विचार ही नहीं आता। तो कोई मच्छर ने काटा तो उनको क्रोध आता है कि नहीं, अरे वो तो अपनी आत्मा में लीन है तो उनको क्रोध आया ही नहीं। उसको कहते हैं कि उनको ये सभी परिषव, मतलब ये मच्छर आदि सभी के ऊपर उत्तम क्षमा है। क्षमा है मतलब पहले क्रोध आ गया और फिर क्षमा कर दी, ऐसा नहीं है, उनको क्रोध आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। मुनिराज को कोई प्रकार का लोभ ही नहीं है, क्योंकि सब त्याग दिया ना तो अभी क्या रखने का लोभ करेंगे, तो उसको उत्तम शौच धर्म कहते हैं। उत्तम सत्य, हमेशा वो किनी किसी के बोलेंगे नहीं, पहले तो बोलते ही नहीं है मुनिराज। आपको पता है मुनिराज के 28 गुण होते हैं, 28 मूल गुण सुने हैं ना, तो उसमें एक सत्य महाव्रत है, फिर एक वचन समिति क्या इरिया भाषा भाषा समिति है, और एक वचन गुप्ति है। ये तीन चीज बोलने के विषय में। वचन गुप्ति क्या है कि आत्मा के आनंद में डूबे हैं तो बोलते ही नहीं, जब बोलते ही नहीं या बोलने का विचार ही नहीं आता तो उसे कहते हैं वचन गुप्ति है। जब ही आत्मा में लीन नहीं रह पाते और टेम्पररी बाहर आते हैं, और अगर किसी को सामने बैठा देखा कि भाई ये कोई दर्शन करने आया है, तो उनको अगर उनके ऊपर ऐसा कोई पात्र जीव लगे और उसके ऊपर करुणा आए, तो हित मित प्रिय वचन में धर्म उपदेश ही देते हैं, धर्म उपदेश ही देते हैं हमेशा। तो भाषा समिति क्या है कि हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं और हमेशा सत्य ही बोलते हैं, तो वह सत्य महाव्रत है। समझ में आ रहा है? जनरली तो पहले बोलते ही नहीं, लेकिन अगर बोलते हैं तो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो उसको उत्तम सत्य धर्म कहने में आता है। ख्याल में आ रहा है? तो वैसे मुनिराज के 10 धर्म होते हैं, और श्रावक जो अभी मुनि नहीं बने उनको 11 प्रतिमा कहने में आती है। ये 11 प्रतिमा आपने सुनी है कभी? 11 प्रतिमा सुनी है? देखिए, जब ही हम आप जैसे कोई जीव अपने आत्मा को जानते हैं, पहले मानते हैं, तो सम्यक दर्शन होता है, तो चौथे गुणस्थान में आते हैं, लेकिन कोई व्रत नहीं है अभी। अभी जैसे आत्मा का आनंद बढ़ता है तो बाहर में वैराग्य बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। अपने आप जब बढ़ता है तो उनको ऑटोमेटिकली भाव आता है कि यार अभी ये सब झंझट में मुझे नहीं पड़ता, ये आप कर लो। फैमिली सिचुएशन में है, सपोज फैमिली में हम फाइनेंस देख रहे हैं, तो कोई डिसीजन लेना है घर पे, रिपेयरिंग वगैरह करवाना है, तो खर्चा करे कि ना करे, ये फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ना। तो पहले तो सब में घर के नेता है या वडील है तो डिसीजन लेते हैं, बाद में उनको ऐसा होता है कि यार ये कौन झंझट में पड़े, वो आएगा मजदूर, उसके साथ कौन मगजमारी करे, मैं तो अपने आत्मा में लीन हूँ, आप ये डिसीजन ले लो, मुझे कोई भी डिसीजन के लिए पूछना नहीं, आप जो लोगे मुझे मंजूर, ऐसी सब चीज त्यागने लगते हैं। तो ये त्यागने के अलग अलग 11 लेवल्स है। सबसे पहले माइल्ड चीज त्यागते हैं, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, अंत में मुनि दशा के नीचे वाली अवस्था होती है। मतलब एक सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं मुनिराज की जैसे ही जंगल में रहते हैं, लेकिन अभी मुनि नहीं है क्योंकि कंप्लीट त्याग नहीं है। समझ में आ रहा है? वैसे अलग अलग 11 लेवल्स होते हैं, उसको 11 प्रतिमा कहते हैं। वास्तविक धर्म तो निश्चय चारित्र है दोनों के लिए, लेकिन जैसे हमने बताया ना कि बाकी लोगों को क्या दिखता है जैन धर्म में कि उपवास कर रहे हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, रात के पहले नहीं खाते, ये करते हैं, वो करते हैं, ये बाहर से दिखने वाले धर्म है। समझ में आ रहा है? तो बाहर से उनको ये दिखता है, इसलिए उसको भी व्यवहार से धर्म कहने में आता है। वास्तविक धर्म ये नहीं है, वास्तविक धर्म तो अपने आत्मा में लीन रहना वो है। आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी इसकी ज्यादा डिटेल्स है ये धर्म भावना में, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है 5 मिनट है अपने पास। हाउ डू इनिशिएट द प्रोसेस के आत्मा में लीन रहे? सबसे पहला स्टेप गुरुदेव जी के प्रवचनों में बहुत बार आया कि भाई धर्म में एंटर होना है तो क्या करें, भाई कुछ तो दर्शन पूजन का उपदेश आप दे दीजिए, कुछ पुस्तक बता दीजिए कैसे पढ़ना है वगैरह, क्या करना है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, सबसे पहला अपने आत्मा का अनुभव करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन करे कैसे? तो उसके लिए 6 द्रव्य 7 तत्व ये आदि जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में शास्त्र से पढ़ना और समझना, दिस इज मोर लाइक अवर बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन. डॉक्टर बनना है तो स्कूल में जाते हैं कि नहीं? तो दिस इज प्राइमरी एजुकेशन. कि आपको ये बेसिक चीज तो पढ़नी है और समझनी है. एक बार जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, गुणस्थान आदि क्या है. गुरुदेव जी पांच बेसिक सिद्धांत बताते थे, निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय. ये सब बेसिक सिद्धांत है. दीज आर योर जूनियर कॉलेज 11th एंड 12th. वो छह द्रव्य सात तत्व आदि स्कूल है. समझ में आ रहा है? एक बार 12th तक आ गए तो अभी आपको सब स्वरूप क्लियर है. अभी अपने आत्मा के बारे में विचार करना, जो पढ़ा है वो सिद्धांत बैठते हैं कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं. चार अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है. मतलब ये छत ये वॉल के ऊपर नहीं है, वो अपने आप अपनी पर्याय में वहां स्थित है. ये अपने हमको बैठता है कि नहीं? लौकिक सिद्धांत में देखेंगे तो लगेगा क्या बेवकूफ जैसी बात करते हैं. दिख तो रहा है कि इसके ऊपर स्थित है, समझ गए? लेकिन जब पारमार्थिक विचार करते हैं तो लगता है कि हाँ सही बात है. हर एक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमता है. तो हर एक द्रव्य की अपनी पर्याय है. तो ये जो लाइट लगी है वो लाइट अपनी पर्याय में वहां स्थित है, वो दीवार की वजह से स्थित है ऐसा नहीं. ऐसा विचार करते करते जितने सिद्धांत पढ़े हैं वो अपने आप को प्रूव करना, वो करने से अपनी आत्मा में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मैं आत्मा ही हूँ. और ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते वही विचारों में आत्मा का अनुभव स्वयं अपने आप होता है. जीव को अनुभव करने के लिए विचार को छोड़ के कुछ नहीं करना पड़ता. ख्याल में आ रहा है? फिर जो तत्व आदि पढ़े हैं उसको समझ के उसमें अपनापन करके ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ ऐसा अपने आप को उसमें रख के, ऐसा नहीं कि किसी और की बात हो रही है, हाँ आत्मा है शरीर आदि है, जैसे कोई तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं. अपने आप को उसमें रख के विचार करना कि हाँ ये मैं हूँ. ऐसा विचार करते करते अनुभव अपने आप होता है. समझ में आ रहा है? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलो जिनवाणी सुधी.
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन. जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे.
बोलो जिनवाणी मात की जय.